ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
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 आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में चौथा अध्याय जिसका नाम है आध्यात्मिक ज्ञान या कृष्ण भावनामृत युक्त ज्ञान, इसमें भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान की आवश्यकता है उस ज्ञान के द्वारा हम अपने कर्म बंधन से भी छूट सकते हैं. लेकिन कर्म में प्रवृत्ति एक तरफ करते रहते हैं और कर्म का फल मिलता रहता है और साथ साथ में न चाहते हुए भी बंधन मिलता है. तो इन चीजों में मनुष्य निश्चित रूप से एक मन वाला नहीं हो सकता, बहुत मुश्किलें आती है. तो जब विरक्ति की बात आती है, यानी जब कर्म फल का त्याग करने की बात करें, वो क्या आसान है क्या? कर्म फल त्याग करने की बात आती है क्योंकि मुक्त होने के लिए कर्म फल छोड़ना पड़ेगा. ये सब जानते हुए भगवान हमें मुश्किलियां के लिए तैयार नहीं करते, कह देते हैं हाँ इनके पास सिद्धांत है लेकिन भक्ति के द्वारा सब कुछ आसान हो जाता है. इसलिए अलग ढंग से हमें कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए बात नहीं करेंगे. मनुष्य के लिए बिना भक्ति कर्म बंधन से मुक्त होना संभव ही नहीं है. इसलिए कह तो देंगे कि कर्म फल से मुक्त होना है, जो ये करता है ये बंधन से नहीं छूता है, यानी कि बंधन से लिपायमान नहीं होता तो वो मुक्त होता है. लेकिन बीच वाली बातें क्यों नहीं करते? बीच वाली बातें करने के लिए ही हमें पहले चेतावनी तो देंगे. तो ये तीन श्लोक ऐसे हैं जिसमें हमें काफी स्पष्टता हो जाएगी. ये 20वां श्लोक है, 21वां और 22वां. इसमें कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स. अपने सारे कर्तव्यों के परिणाम के प्रति आसक्त नहीं रहना और हमेशा आत्मा में संतुष्टि पाना, आत्मसंतोष में रहना और मुक्त होना. ये व्यक्ति काम करते हुए भी कुछ करता है, यद्यपि बहुत सारे प्रकार के कामों में वो जुड़ा रहता है लेकिन करे हुए भी उसे कुछ बंधन की बात होती है, फल के आसक्तियां. बाद में कह रहे हैं कि निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना कोऽपि किल्विषम. यदि मनुष्य ये समझकर जो मन बुद्धि को पूर्णतया नियंत्रित करते कर्म करते रहता है वो सब प्रकार की अहंता ममता का त्याग करता है, उसके पास जो कुछ है उस पर वो अधिकार नहीं जमाता, मेरा तेरा कुछ नहीं करेगा और ये सिर्फ जीवन की आवश्यकता के अनुसार भी, जहां तक जीवन यानी कि ये शरीर और आत्मा दोनों का निभाव बना रहे उतना ही कर्म करने में उसकी रुचि रहती है, अन्यथा नहीं. और इस तरह वो काम करके किसी भी प्रकार के पाप को पाता नहीं. उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए यद्रच्छाला बसंतुष्टो दंदास्तीतो बिमत्सर समः सिद्धाव सिद्धौ चकृत्वापि न बध्यते। इस ढंग से जो मनुष्य अनायास ही जो कुछ अपने पास आता है वो स्वीकार करता है और किसी भी प्रकार के द्वंद यानी कि एक दूसरे से विपरीत अवस्थाओं से विचलित नहीं होता, न तो किसी की ऐसी अवस्था देखकर ईर्ष्यालु बनता है कि इसके पास क्यों ज्यादा है। कोई प्रेरित होता है कि देखो ये अनिति से कमाई कर रहा है तो उसको भगवान क्यों देते हैं और हम तो बात ईमानदारी से काम कर रहे हैं फिर भी भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखते, ऐसी ईर्ष्या वृत्ति से वो दूर रहता है। जब वो सफलता और निष्फलता दोनों में संभाव वाली स्थिति में बना रहता है वो कभी भी अपने कर्मों से लिपायमान नहीं होगा, यानी कि कर्म बंधन में फंसेगा यानी कि मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन से छोड़ने के लिए देखो एक कितना अनासक्त भाव से काम करने की बात कर रहे हैं। अनासक्त भाव यानी कि आसक्ति नहीं, कर्म तो करना ही है और जब तक कर्म अपनी शारीरिक आवश्यकता जिसमें स्वास्थ्य बना रहे, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो उतना स्वास्थ्य जिसमें आत्मा कम से कम पूरी सावधानी यानी कि स्वास्थ्य भरी अवस्था में आत्मा की इच्छा भगवान की सेवा में बनी रहे, नहीं तो बीमार होते हैं तो आत्मा चाहते हुए भी नहीं कर सकता। तो शरीर की आवश्यकता की मर्यादा में रखना और उस भाव से कर्म करने के लिए यदि वो बद्ध होता है लेकिन बंधन में नहीं आता, जिम्मेदारी है मुझे मेरा शरीर भगवान की सेवा के लिए टिकाने की जाए, तो इतना करते हुए वो कर्म बंधन से भी लिपता है। जहां तक हम सभी कर्म कर रहे हैं कर्म बंधन में फंस रहे हैं, चेतावनी तो बहुत देते हैं लेकिन प्रायोगिक रूप से हमें इन कर्म बंधनों से छोड़ने के लिए यहां कोई सीधा निर्देश नहीं देते कैसे। उसके पीछे रहस्य ये बताया गया है कि मनुष्य के लिए सबसे अनुकूलता वाली परिस्थिति भगवान को बीच में रखकर उनकी प्रीति के लिए कर्म करना में सारा अपना कर्तव्य पूर्ण होता है, ऐसा विश्वास जमाने की आवश्यकता बताते हैं। नहीं तो जो जहां तक इतना विश्वास नहीं है श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय कृष्ण भक्ति करिले सर्वकर्म कृत हो। चैतन्य चैतन्यमृत में श्रद्धा शब्द का ये व्याख्या दी गई है। श्रद्धा शब्द की क्या व्याख्या है कि ये विश्वास कैसा है, सुदृढ़ निश्चय पूर्वक, सुदृढ़ यानी इतना मजबूत विश्वास होना चाहिए। तो किस पर कि कृष्ण भक्ति करी ले, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के सारे कर्म करते हुए ही अपने सारे कर्तव्य की पूर्णता हो जाएगी, ऐसा विश्वास। जब तक ये विश्वास नहीं है फिर ये भगवान ऐसा समझाते हैं उसमें हमें मार्ग नहीं निकलता। हमारी समझ में भेद पड़ता है। हम भगवान पर विश्वास रखने में पहले तो अपनी जो ये भौतिक अवस्था जिसमें तीन गुण सत्व रज और तमोगुण के द्वारा हम प्रभावित होते रहते हैं, तो हमारी श्रद्धा भी प्रभावित रहती है। कभी कभी हम सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं, कभी कभी हम राजसिक श्रद्धा वाले बन जाते हैं, कभी कभी तामसिक श्रद्धा वाले बन जाते हैं। हमारी श्रद्धा का भी ये ऊपर नीचे होना, यानी कि जब श्रद्धा विचलित होती है, कोई भी भौतिक संयोग हमारे विपरीत हो जाते हैं, हमारे अनुकूल नहीं होते, तो ये संयोग में क्या होता है कि हमारी श्रद्धा डगमगती है, हाँ झोला मारती है। कभी श्रद्धा बहुत ऊंची हो जाती है, कभी श्रद्धा नीची हो जाती है, लेकिन ये जीव की ये परिस्थिति है ही। जहां तक वह ये तीन गुणों के प्रभाव में बना रहेगा तब तक उसकी श्रद्धा ऐसे ही विचलित ही रहेगी। इन तीन गुणों के प्रभाव से छुटने के लिए ही एकमात्र उपाय दिया गया है। जैसी श्रद्धा है वैसा ही हमारा आचार विचार व्यवहार और आहार भी होता है। जैसी हमारी ये भौतिक तीन गुणों द्वारा प्रभावित होने वाली श्रद्धा है, वैसा ही हमारा आहार होता है, वैसा ही विचार आते हैं, वैसा ही व्यवहार आते हैं। तो तीन गुणों का प्रभाव से छुटने के लिए क्या है? यदि ये पहले से ये तीन गुणों को निरस्त कर दें तो हमारा मार्ग निष्कंठ हो जाएगा, ये कर्म बंधन में फंसने का कोई हमें सवाल भी नहीं पैदा होगा। नहीं तो भगवान क्या क्या कह रहे हैं कि कितने दृढ़ता से मनोबल पैदा करके यदि कोई कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो वो कर्म के फलों पर उसकी अनासक्त भाव, यानी कि फलों को त्याग करना चाहिए या फलों भगवान को दे देना चाहिए, ऐसा समझाते हैं। लेकिन ये क्या देना आसान? हर रोज कर्म करते, कर्म में व्यवहार है, कर्म में जो आदान प्रदान है, एक दूसरे का निभाव है, तो क्या इन फलाशक्ति या कर्माशक्ति से हम मुक्त हो सकते हैं क्या? लेकिन फिर भी आवश्यकता है, नहीं तो छूटेंगे कैसे? एक तरफ मना कर दे कि हो ही नहीं सकता, कोई प्रैक्टिकल तो होना चाहिए, फलाशक्ति मुक्त होने की आवश्यकता है, देहात्मभान से छूटने के लिए फलाशक्ति ही छोड़ो कह देते हैं, लेकिन कैसे छोड़ो? यदि हमारी श्रद्धा भौतिक तीन गुण से रंजित रहती है तब तक फलाशक्ति भी रंजित रहेगी, उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। गुणों का संग इतना बेकार है, लेकिन हम अपने गुणों को निर्गुण या नाबुद करने में हम कला जानते नहीं, इसीलिए ये चीजों की आवश्यकता हमारे जीवन में स्पष्ट है ही, लेकिन उसकी कला भी भगवान बता देते हैं, क्योंकि युग के अनुसार इन कर्म बंधन से छुटने या पवित्र होने का जो रास्ता था तो सत्ययुग में अलग था, त्रेता युग में अलग था, द्वापर में अलग था और कलयुग में भी अलग। द्वापर का तरीका कलयुग में नहीं चलता, सत्ययुग का तो बात ही छोड़ो, किसी भी प्रकार का हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है। तो गुणों का प्रभाव से छुटने के लिए ही एकमात्र हमें भगवान एक चाबी दे देते हाथ में। तो अनासक्त भाव की बातें बहुत आसान बन जाएगी। कृष्ण भावनामृत कर्म ऐसी कला है, तो उसके लिए आवश्यक विश्वास होना चाहिए, आवश्यक श्रद्धा होनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत भगवान ये भौतिक तीनों गुणों से परे हैं। भगवान की जो भावना वाली बातें हैं इसमें ये सत्व रज और तमोगुण दखलगिरी नहीं करते हैं, नहीं तो कृष्ण भावना हो ही नहीं सकती। ये आध्यात्मिक स्तर पे है। जैसे कि भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के बारे में जो जो चीजें हैं वो कभी भौतिक स्तर पे हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं। तो इनको भौतिक दृष्टि से समझना, भौतिक गुणों द्वारा समझना, भौतिक गुणों को हम भगवान को कैसे समर्पित करें, दे देना चाहिए, ये दखलगिरी क्यों करें। तो त्रिगुणात्मक भाव जो है सत्व रज और तमोगुण, इनके द्वारा हमारे ये कर्म बंधन की जो प्रवृत्ति किसी भी न किसी ढंग से भी चालू रहेगी। यदि धार्मिकता भी हो फिर भी वो धर्म में तीन गुण हमें परेशान करने वाले हैं। धर्म का मूल तत्व इन तीनों गुणों के प्रभाव से छूटने का है, तभी हम भगवान की बातें समझने में समर्थ होंगे, अन्यथा नहीं। तो यहां इन तीन श्लोकों में हमें तैयार करते हैं भगवान कि किस ढंग से आसानी से सिर्फ एक ही महत्व का सिद्धांत हम यदि अपना ले तो अपने सारे कर्म कृष्ण भावना युक्त बन सके। तो भगवान को अर्पण करने की विधि बताते हैं, स्वयं कहते कि यत करोषि यद अश्नाषि यज्ज होषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। इसमें तप यज्ञ यानी कि जो सत्य युग की बातें थी वो भी आ जाती है, त्रेता युग की बातें वो भी आ जाती है, और द्वापर युग में भगवान की बहुत सारी दान धर्म वाली जो चेष्टाएं जो भगवान को समर्पित करने के लिए अपने कर्म समर्पित करने, ये द्वापर युग की भी बात आ जाती है। ये श्लोक में आप देखोगे कि पूर्णतया शुद्धि का हमारा सारा प्रयास बना रहेगा। यत करोषि यत अश्नाषि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। सत्ययुग में ध्यान धारणा इत्यादि जो तपश्चर्या द्वारा शुद्धि का प्रयत्न होता था, पवित्र होने यानी तीन गुणों के प्रभाव से छुटने के लिए मनुष्य को हजारों साल तपश्चर्या करनी पड़ती थी। लंबी आयुष्य में हम फालतू टाइम पास नहीं कर पाते हैं, तो तपश्चर्या करो। एक लाख आयुष्य मर्यादा वाला जीवन तो इसमें टाइम पास करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो करो दबा के तपश्चर्या, ये शुद्धि का साधन था। शुद्धि का साधन यानी कि भौतिक तीन गुणों के प्रभाव से छुटने का शुद्धि है ना, ये नहीं तो तीन गुणों हमें अशुद्ध ही रखते हैं, बंधन में रखने वाले। अपना सच्चा स्वरूप थोड़ा निकालने देंगे। तो सत्य युग का तप तो यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो मुझे अर्पण कर, तो जो कुछ करे जो इसमें तप भी क्यों ना आ जाए मुझे अर्पण कर। वहां तो पहले भगवान कौन है वो भी नहीं जानते थे तपस्या ये सत्य युग में। सत्य युग में तपस्या करना भी कठिन था और सारे लोग थोड़े कर पाते थे। बहुत सक्षम कोई ऋषि मुनि पैदा हुए हो वो लोग तप का मार्ग लेते थे। तो यत तपस्या सीखाते तत्कुरुषो मदर्पण। दूसरा आया यज्ञ होशी, तो जो कोई यज्ञ में आहुति दे, अरे वो तो आ गया त्रेता युग का प्रश्न। तो त्रेता युग में त्रेतायाम यजतो मखैहि, भगवान की पूजा यज्ञ द्वारा त्रेता युग में होती थी, लेकिन वहां भी मुश्किलियां थी। सर्वप्रथम एक यज्ञ की संपन्न करने के लिए चार प्रकार के ब्राह्मण चाहिए। एक होता था कोई उद्गात कहलाता था, कोई याज्ञिक कहलाता या कोई ऋत्विक कहलाता था। ये सब चार मिलकर एक यज्ञ का संपन्न करने का प्रयास करते थे। फिर भी उस समय राक्षस लोग इतने परेशान करते थे कि यज्ञ में टट्टी पेशाब इत्यादि कर लेते थे और हड्डियां डालते थे लहू और सारे यज्ञ को डिफाइल कर देते। इतनी परेशानी में यानी कि शुद्धि का प्रयत्न करने में अशुद्धि आ जाती है बीच में। तो यहां भगवान के तत्कुरुषो मदर्पण यज्ञ होशी तदा तत्कुरुषो मदर्पण। बाद में कहते ददासियत दान धर्म। दान धर्म द्वापर का युग और लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए सोना चांदी ये गहने इत्यादि तो सही, लेकिन इतनी मिलकत देकर भी भगवान की सेवा के लिए यानी कि अपनी पसीने की कमाई भगवान के लिए ऐसी पूजा विधि में और लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगानी पड़ी, वो शुद्धि का मार्ग बताया था। तो यज्ञ दान तप क्रिया न त्याज्यमिति, ये कोई त्यागने की बात नहीं है, लेकिन हम इस कलयुग में कितना कर सकते हैं यज्ञ दान और तप? कुछ। तो भगवान कहते हैं यदश्नासी, तो जो कुछ खा है वो भी तो क्रिया है, यज्ञ दान तप की क्रिया ही थोड़ी है, खाना भी तो तेरा शुद्धिकरण वाला होना चाहिए। तो यदश्नासी और यानी कि जो कुछ करे यत करोषि, यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पण। खाए तो जो कुछ करे, चल कलयुग में तो हम क्या क्या नहीं करते वो भी भगवान को समर्पित करने की भावना यदि करें तो भी शुद्धि आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे कर्तव्य में पूर्ण श्रद्धा भगवान को समर्पित होने की यदि बनी रहे तो श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय, ये कृष्ण की भक्ति करने से ही सारे कर्म हमारे कृत हो जाएंगे। ऐसा परिचय यहां भगवान दे रहे हैं, नहीं तो कर्म बंधन से छूटना अपने आप इन युगों में यदि मुश्किल था तो कलयुग की बात ही कहां। लेकिन सिद्धांत तो एक ही रहता है, छूटना है, छूटने का प्रयत्न करना ही चाहिए, लेकिन जिस ढंग का प्रयत्न बताया है उस ढंग को हमें अपनाना, इसमें अकलमंदी कहलाती है। तो इस ढंग से इन श्लोकों में हम ना समझ मत रहे, सिद्धांत तो रहेगा कि क्या आवश्यक है इन कर्म बंधन से छूटने का सबसे आसान तरीका भी हमें सीखना चाहिए और वो भगवान स्वयं बताते हैं। तो कर्म बंधन से छूटने के लिए क्या कलयुग में कोई स्पेशल टेक्निक बनाई है कि नहीं। तो यही है कृष्ण भावनामृत टेक्निक, सर्वप्रथम टेक्निक है, ये कलयुग के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है। अन्यथा अन्य युगों में सिद्धि नहीं मिलती थी। जैसे कि चलो भगवान का नाम का जप करने के लिए हमें इस कलयुग में ज्यादा आवश्यकता बताते हैं, ज्यादा आवश्यकता, क्योंकि नाम की महिमा बहुत बड़ी है। भगवान का परिचय नाम द्वारा ही होता है, उनके नाम में उनके आध्यात्मिक गुण भी समाये हैं, उनका स्वरूप भी समाया है, उनकी लीला भी समाई है। तो यदि नाम में ये सब कुछ होता है फिर भी हम नाम के प्रति अरुचि रखते हैं तो ये कलयुग कितना दुष्ट युग कहलाता होगा। अन्य ये यज्ञ दान तप क्रिया जो अन्य युग में मुश्किली से हो पाती थी जिसमें, तो इस युग में कैसे होगी। क्रेडिट कार्ड में प्लास्टिक मनी कहलाता है, क्रेडिट कार्ड में दान देना ये भरोसामंद है क्या? भरोसामंद नहीं कहलाता। हर साल दान के लिए प्रयत्न करते हैं तो कहते कि मेरे क्रेडिट कार्ड में ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगा कह रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड की अवधि भी एक साल की होती है, दूसरे साल में पता नहीं क्या होगा, वो चलेगा वो नंबर है कि नहीं, यानी कि फिर से हमें आवेदन करना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा कि भैया ये पुराना क्रेडिट कार्ड है या नया है। तो दान की क्रिया है भी कितनी आसान नहीं रही, और अन्य चीजों की तो बात ही क्या, तब के लिए जंगल नहीं रहे। क्योंकि जंगल में जाकर कोई एकांत साधना करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जहां देखो ट्रैक्टर और ये बुलडोजर की आवाज आती है, इंडिया में तो काफी परेशानी हो गई। यानी तो युग के अनुकूल जो हमें स्वीकार करना चाहिए तो उसमें हम बालिकाएं से यदि देखें तो सचमुच इनके अलावा दूसरा कोई ज्यादा आसान उपाय मिलेगा नहीं। तो युग के अनुसार जो जो सूचित हैं वो भगवान की नजर में, जिन्होंने भगवान के प्रत्येक अंतर्दृष्टि करके भगवान का भगवान की अनुभूति की है, भगवान के परम सत्य का परिचय किया है, इन लोगों के द्वारा जब हमें ये सूचना मिलती है कि भगवान के नाम का जप तप, यानी कि जप की महिमा, भगवान के नाम की महिमा इत्यादि समझ करके हम अपना लेते हैं तो कर्म बंधन से छूटने का बहुत आसान मार्ग मिल जाता है। हम तो समझते हैं कि सारे और आसान हो जाए और आसान हो जाए, लेकिन ये आसानी क्या हमारी ये अज्ञानता का गैरफायदा उठाने की बात नहीं क्या? व्यक्ति कलयुग में इतना अकलमंद नहीं है, आलसी है। एक तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता, इतना होते कितना परेशान व्यक्ति है। हम लोग क्या परेशान है? नहीं परेशान है ना, तो परेशानी में हमें बहुत आसान चीज चाहिए। तो लेकिन भगवान का नाम गाने की बात जब आती है तो उसमें और आसानी कहां प्राप्त हो, उससे ज्यादा कोई आसान चीज है? भगवान का नाम का कीर्तन करना, भगवान के कीर्तन में नाचना और कीर्तन के बाद जब थक जाते हैं तब प्रसाद पाना, इनसे कोई आसान चीज है? कोई फिर भी हम इसमें भी आलस करें तो क्या फायदा, दुर्भाग्य कहलाता है। मनुष्य दुर्भागी है। इसे जीवन की सफलता का कोई हम आशा नहीं रख सकते। ये जीवन में सफल नहीं होगा। दुर्भागी मनुष्य के प्रत्येक क्या करें, आप घोड़े को पानी तक ला सकते हैं, पीना न पीना उसकी जिम्मेदारी है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमें जब भक्ति के कोई भी प्रयोजन में भगवान की तरफ दरई वाला ये जो उपाय है, हरिनाम संकीर्तन में जो कोई योगदान देना चाहता है उसे अवकार देना चाहिए, लेकिन जो नहीं देना चाहिए तो देना चाहता है तो उसके पीछे जबरदस्ती से कोई पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं, उस समय की बर्बादी है। हरिनाम पर भी अपराध चढ़ता है कि जिसको विश्वास नहीं है इनको भगवान के नाम की महिमा का उपदेश भी नहीं देना होता, क्योंकि दुर्भाग्य है। दुर्दैव मिद्रशम यहाँ जनी नानुराग, चैतन्य महाप्रभु कहते नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापितं नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिद्रशम यहाँ जनी नानुराग। हे भगवान, आपके सैकड़ों करोड़ों नाम है, जैसे कि गोविंद माधव इत्यादि, और हरेक नामों में आपने सर्वशक्ति भरी दी, सब शक्ति एक एक नाम में है। और इन नामों को लेने के लिए कोई नियम का बाध नहीं, कभी भी ले सकते हो, कहां भी ले सकते हो, किसी समय भी ले सकते हो। एतादृशी तव कृपा, ऐसी कृपा आपने की, फिर भी दुर्भाग्य मेरा ये है कि आपके नाम के प्रति ही मेरा अनुराग नहीं है। अभी ये अनुराग क्या चीज है? अनुराग यानी अटैचमेंट, जिस पर हमारा अटैचमेंट यानी आसक्ति होनी चाहिए इस पर नहीं है, और जिस पर नहीं होनी चाहिए इस पर हमारी है। आ गया। तो जब हम उदार दिल वाले बनते हैं तब भगवान के नाम प्रत्येक भी हमारी उदारता भगवान को आकर्षित कर सकती है। भगवान का नाम लेते ही बहुत सारी जगह साफ हो जाती है उदारता। तो उदार चरित्र में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। जो कंजूस है उदार नहीं कहलाता। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम्। ये उदारता का कोई कोई नापतोल है, कोई मर्यादा है उदारता की? लेकिन उसी तरह विरोधी भाव देखो तो अयम निज परो व्यक्ति, ये मेरा है ये तुम्हारा है, चल तू तेरा संभाल मैं मेरा संभाल, राम राम। अयम निज परो व्यक्ति लघु नाम लघु चेतसाम, ये तो छोटे मन वालों का बात है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम्। जैसे चरित्र उदार बनता है सारी दुनिया उसका परिवार जैसा बन जाता है। मैं गुजराती हूं, मैं हिंदू हूं, ये सब उदारता का चिन्ह नहीं है। वैष्णव उदार, वैष्णव हमेशा उदार होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो सर्वाधिपति है, सर्व के मालिक है, उसमें कंजूसाई नहीं है। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी बसे हैं, क्या कंजूस हो तो बसते हैं नहीं, सबके हृदय में उदार है। दैत्यों के भी हृदय में बसे हैं, देवताओं के भी हृदय में बसे हैं, मनुष्य पशु एक एक प्राणी, अरे एक एक कण, निर्जीव कण में भी भगवान परमात्मा के रूप में है, निर्जीव कण में। निर्जीव कण निर्जीव नहीं होता वास्तव में, उसमें भी बहुत सारी गति मालूम होती है, कणों की गति, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास घूमते रहते हैं, समझ, ये कहां से गति आई, कौन घुमाता है, ये तो निर्जीव है। जीव कण और निर्जीव कण में इतना ही भेद है, परमात्मा तो दोनों में है। हाँ? लेकिन ये चित्त कण जिसे आत्मा कहते हैं, वो कण यदि कंजूस रहता है, यदि आसक्त बना रहता है भौतिकता पर ही, तो आसक्ति भौतिकता में उसका पलटा मारकर उसे ही निर्जीव कण बना देती है, जिसमें चेतना बिल्कुल नहीं होती। चेतना हाँ, आत्मा से कब चली जाती है, कब वो पदार्थ रूपी कण बन जाता है। दोनों का उद्भव ब्रह्म ज्योति बताया, चित्त कण यानी कि आत्मा का और भौतिक कण, दोनों का उद्भव स्थान ब्रह्म ज्योति बताया। एक में चित्त है यानी कि कॉन्शियसनेस है, भगवान की भावना, वो आध्यात्मिक स्थिति वाली, दूसरे में नहीं, वो भी कण है ये भी कण है, हम वो कण है, लेकिन वो चेतना की जागृति बनाए रखने में हमारी कंजूसता यदि बीच में आती है तो हम दुर्भागी कहलाएंगे। दुर्भाग्य पहले से ही ऐसे निर्मित हुआ है, हमने बुलाया है स्वयं अपनी दुर्बुद्धि से, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वोनेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ये भौतिक सृष्टि के सृजन में भगवान ने ये सारे चित्कण जो इच्छा और द्वेष साथ साथ लेकर आए हैं, भगवान विरोधी इच्छा जो द्वेष के कारण ही पैदा होती है, तो उदार चरित्र में द्वेष बिल्कुल नहीं रहता। सर्वप्रथम वो भगवान का हितेच्छु बन जाता है, द्वेषी नहीं रहता, इसीलिए वो भगवान का सुनने का लायक रहता है, जो भगवान कहते हैं वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान की भक्ति का अति गूढ़ रहस्य अर्जुन को बताते हुए भगवान ये कहते कि इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, हे अर्जुन मैं तुझे अति गुह्यतमं ज्ञान, मेरी भक्ति का जो कह रहा हूं वो तुझे इसलिए कह रहा हूं कि तू मेरा ईर्ष्या में अनसूय हो। तो उदार चरित्र यानी कि वो उसका दुर्भाग्य कैसे हटता है, जो भगवान का नाम लेता है उसका दुर्भाग्य चला जाता है, नहीं तो दुर्दैव मिदृशम हा जनी अनुराग, मुझे भौतिक आसक्ति बहुत है इसलिए टाइम नहीं। आप लोगों की टाइम, आप लोगों के पास बहुत टाइम है इसलिए टाइम पास के लिए चलता है, जाओ हरि नाम करो। अरे टाइम पास नहीं है, उदार चरित्र है, एक समय की बर्बादी नहीं है भगवान का नाम गाने में। मूर्खता हाँ, पर चार चांद लगाने वाले यही कहते हैं, अपनी मूर्खता आगे कहते हैं, बढ़ाते हुए कहते हैं। न्यूयॉर्क शहर में 1966 में जब शुरू में कई भक्त प्रभुपाद जी की ये साथ जुड़े, प्रभुपाद जी ने उन लोगों को कहा कि जाओ शहर में नगर कीर्तन करो, तो हरे कृष्णा महामंत्र में वो तो इन लोगों को इतनी दिलचस्पी लगी तो मत्था भी मुंडा दिया, बड़ी बड़ी शिखा भी रखी,
हाँ,
लेकिन धोती पहनने की नहीं थी, तो चादर लपेट करके जाते थे। और उस समय न तो मृदंग था, किसी की पास करताल था, और नहीं तो वो खंजरी ठप इत्यादि लेकर घूमते रहते थे और नाचते डोलते हरे कृष्ण महामंत्र गाते रहे। लेकिन ये सड़कों पर चलने वाले लोग कह रहे कि ये तो तमाशा है कोई, वो लोग हंसते थे। तो किसी ने कहा कि स्वामी जी हमें तो यहाँ डिस्करेजमेंट जैसा लगता है। तो प्रभुपाद जी उनको उत्साह देते थे, अरे कौन कहता है डिस्करेजमेंट, उन लोगों को मूर्खों को पता नहीं कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोग कीर्तन कर रहे हैं। बुद्धिमान लोग जिसके हृदय की दुर्बलता भगवान के नाम लेने में बीच में अंतराय या अवरोध डालती है, तो ऐसी दुर्बलता को मिटाने के लिए समूह में
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इसका निरंतर जाप करना चाहिए साथ में, अकेले अकेले नहीं। हृदय की दुर्बलता हटानी है तो अवश्य संकीर्तन करना चाहिए, अकेले अकेले कीर्तन करके कोई फायदा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने सारी जनता को ये संकीर्तन आंदोलन में डुबा दिया, सारी जनता को ड्राउन कर दिया, यहां के कीर्तन करते रहो। तो इस ढंग से कृष्ण भावनामृत को प्रायोगिक रूप से अपनाने से ही ये सारी समस्याएं, भवबंधन काटने की जो रीति जिसके द्वारा सारी समस्या हट जाती है वो प्राप्त होती है। भक्ति में ये सिर्फ स्वयं पर छोड़ देने से कोई फायदा नहीं। लोग मान लेते हैं कर लेंगे आप भक्ति करने का, लेकिन भक्ति तत्व तीन गुणों से परे है, तीन गुणों से मिश्रित भक्ति भक्ति नहीं कहलाती। उसे भौतिकता से रंजित भक्ति भगवान को नहीं पहुंचाती, भगवान के समक्ष नहीं रख सकते। तीन गुणों के प्रभाव से छुटकर ही तब भगवान कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन ससेवते सगुणान समितित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसीलिए जिस तरह बताए हुए अनुसार ही भक्ति करने से तो वो अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती, अपनी मनमानी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। तो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम भौतिक तीनों गुणों से लांग कर ब्रह्म भूय स्थिति यानी कि मुक्ति की स्थिति जहां बिल्कुल आसक्ति है ये सीधी स्थिति पर पहुंचाते हैं, नहीं तो ये कर्म में आसक्ति और कर्म बंधनों में कर काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें इतनी उलझन आती है। तो बेहतर है सीधी भक्ति, तो अव्यभिचारिणी भक्ति करने से ही हमें जो लाभ तुरंत मिलता है वो अन्य युगों में मिलना मुश्किल समझा जाता। तो ये कृष्ण भावनामृत इस ढंग से अंगीकार करके हम पूर्ण अवस्था तक पहुंच सकते। तो किसी को कोई प्रश्न है?
ना तो सोचते तो है कि करें, सब कुछ पता होता है फिर भी नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए, तो उसको क्या क्या प्रैक्टिस करना है उसके लिए?
आप लोग यहाँ हफ्ते में एक बार मिलते हैं?
हाँ, हम लोग एक बार मिलते हैं।
एक बार
तो संडे को मिल जाते हैं कुछ मंदिर में।
तो हर रोज मिलो। यदि कमजोरी हफ्ते में लगती है तो दिन दिन में तो नहीं लगेगी। हर रोज मिला करो। आप हफ्ते में एक बार दवाई खाते हो, हर रोज खाओ तो जल्दी हो जाएगा। बूस्टर डोज चाहिए, वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हर रोज रेगुलर नियमित रूप से करो। आप मर्यादा क्यों बांधते हो? भक्ति को, भक्ति तो अमर्यादित है, आप मर्यादा क्यों बांधते हो? एक बार पढ़े हाँ तो बहना चाहिए इसके प्रवाह के साथ। यदि आप रुकोगे हाँ तो भक्ति के प्रवाह में रुकावट लाना चाहते हो क्या? नहीं ला पाओगे, बहना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ हाथ में आ गया, चलो पानी तो बह रहा है, मैं अपनी शक्ति के अपनी ताकत से उसका अवरोध करूं, मैं क्यों बहू? नहीं, भक्ति में बहने से जितना फायदा होता है हाँ वो पड़े रहने से फायदा नहीं है। पड़े रहने से फायदा नहीं तो जब तक आपका मनोबल भगवान की एकमात्र भक्ति करने से सर्व कर्म करत होए पर बनेगा नहीं, तब तक भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी? भक्ति तो बढ़ती है, आप जात बीच में रुकावट लाते हो। लेकिन संकीर्तन यज्ञ में जब हो तो आप रुकावट नहीं ला सकते। चैतन्य महाप्रभु की ये मोमेंट को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति की मोमेंट को कोई नहीं रोक सकता, बेफिक्र रही है। क्या क्या अवरोध नहीं पड़े हैं, क्या इतनी सारी मूवमेंट के पीछे भी, लेकिन बहती जा रही कि आप छोटे मन वाले होंगे तो परेशानी होंगे। नहीं विशाल, जब जीबीसी लोग को भी कहा जाता है कि वर्ल्ड विजन रखो, अरे वर्ल्ड क्यों, प्लेनेटरी विजन रखो। प्लेनेटरी क्यों? यूनिवर्सल विजन यू कैनॉट थिंक ऑफ लिटिल थिंग। और कोई प्रश्न?
गुरु जी आपन में बड़ा अवरोध है। देखो ब्राह्मण है वो लोग शिव को मानता है, सिंह लोग है वो गुरुद्वार में मानता है, वैष्णव है वो कृष्ण में मानता है, यक्ष रविंद्र क्या?
ब्राह्मण लोग कृष्ण का नाम नहीं लेते क्या?
नहीं, शिव शिव का,
शिव का लेते हैं
जी।
चलो ठीक है, लेने दो। यदि आप आप आपके पास यदि कोई आए शिव जी का भगत, उनको कहना क्या तेरी परेशानी खत्म हो गई? हाँ, ऐसे करना शिवालय में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र जपना, देख शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। कहना तो उसकी परेशानी हट जाएगी। हाँ, यदि कोई वैष्णव होकर भी कंजूस रहता है, कृष्ण में मानता है लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं उसका पालन नहीं करता, तो उसे भी कहना कि भैया हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। सत्संग में आओ तो उसको भी लाभ होगा, आगे बढ़ेंगे। सबको आगे बढ़ाना है। ये बैठे हैं आप कह रहे हैं ना कि ये सब पकड़ के कंजूस बनकर बैठे हैं। भक्ति के प्रवाह में सबको निमंत्रण देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और संकीर्तन यज्ञ की आवश्यकता, इसमें शिव जी की महत्ता बढ़ेगी घटेगी नहीं, उनको कहना, इस ढंग से समझाने की आवश्यकता है और शिव जी का महत्व बताना कि ये कौन है, हमारे लीडर हैं शिव जी, जो देखो माला करते हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं? कहना।
तो आपका कहना ये है कि कथा हो के भक्ति
कर। अरे कथा बता नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र।
हाँ, बोलता कि घर पर आदमी करता है कि
सबको
बुला के
सबको बुलाओ और सबको भगवान नाम में डुबाओ, क्योंकि इस कलयुग में तारण का मार्ग कृष्ण नाम है, दूसरा कोई नाम नहीं है, वो तारण नहीं कर रहा। भौतिक अपेक्षाओं के लिए हम देवताओं के पीछे देवताओं का मंत्र जपते रहते हैं, लेकिन वो देवताओं को परेशान करते, उसका क्या? देवता तो दे देते हैं क्योंकि तुम्हारी जान छुड़ाना चाहते हैं, उनके भजन में भंग क्यों करें? तो कहने का मतलब है जब भगवान का नाम लेते हैं तो क्या देवताओं को परेशानी आएगी? हाँ, मूर्खों की बुद्धि को जब सफाई करने जाते तो इन लोगों को परेशानी आती है कि अरे ना ना मैं जैसा हूं ठेंगा, सफाई मत करो। तो ठीक है, दुर्भाग्य है और तो क्या है। जब भगवान के नाम पर जिसको श्रद्धा नहीं है उसको उपदेश करने की भी आवश्यकता नहीं, आए तो ठीक है नहीं तो राम राम, आप आगे जाओ। और कोई प्रश्न?
महाराज आपने जो बताया कि सब युगों में कर्म बंधन से छूटने का कोई क्रिया थी, जैसे कि अभी कलयुग में है नाम जपना, भगवान का नाम लेना, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भगवान का अनेक नाम है, तो सब में उनकी पूर्ण शक्ति है, तो उस नाम से जपने से आप कर्म बंधन से मुक्त होते, वो सबसे आसान तरीका। और जो दूसरे युग में जो क्रिया बताई इस युग में नहीं होती है, वो आसान नहीं है, तो जब ये इस युग में जो नाम जपना आसान था तो सतयुग में और द्वापर और त्रेता युग में क्यों आसान है?
ये भी ठीक ढंग का प्रश्न तो है, लेकिन आप सोचिए यदि आसान होता सत्ययुग में भगवान का नाम, लेकिन टाइम पास नहीं होता। जब शारीरिक शक्ति यानी कि चाहे सत्वगुण भी प्रधान हो उस समय, क्योंकि सब प्रकार की सुखाकारी हो सकती है, सब प्रकार की कुदरत होती है, जहां पोल्यूशन का तो कोई नाम नहीं, यानी कि सात्विक भाव प्रधान है, तो सात्विक भाव प्रधान में सात्विक गुण जो है वो शारीरिक सुख की भावना बताता है, और उसमें भी बहुत प्रकार की श्रृंखला होती है, श्रेणियां होती है कि ये टॉप मोस्ट कहलाता है शारीरिक सुख, ये जैसे कि इस कलयुग में भी जब स्वर्ग और नरक की बात आती है तो नरक में दुख पीड़ाएं जाए और स्वर्ग में सुख की भावना है, तो सुख का स्टैंडर्ड भी होता है ना है? जैसे जो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जितना सुख है वो इतना इंद्रलोक में नहीं बताया जाता है। ब्रह्मा तो सत्व गुण प्रधान है लेकिन इंद्र रजोगुण प्रधान है, तो उसमें इंद्र को परेशानी भी ज्यादा होती है। तो आप देखोगे कि सत्व गुण प्रधान होते हैं, क्या ब्रह्मा इन गुणों से मुक्त है क्या? बिना भक्ति गुणों से छुटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस समय तपश्चर्या द्वारा शुद्धि करने का मार्ग इसलिए दिया गया था कि ये सब होते हुए भी अनासक्त भाव पैदा करने वाले कितने होते, क्योंकि तपश्चर्या में सिद्धि आती है, सिद्धि भौतिक होती है और भौतिक सिद्धियों के भी पीछे जो लालसा होती है, आठ प्रकार की सिद्धि आप देखोगे कि क्या क्या नहीं। ये कर्दम मुनि की बातें आप देखोगे तो क्या अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हवा महल बना दिया था, और कहां कहां घूमे इनकी सिद्धियां देखे। तो कर्दम मुनि ने अपना विस्तार किया आठ यानी खुद के साथ नौ, और देवहूति को नौ बेटी पैदा कर दी। देवहूति से नौ बेटियां पैदा कर दी। फिर भी देवहूति खुश नहीं थी, उसको बेटा चाहिए है ना, यानी कि परेशानी है, बंधन है। लेकिन देवहूति अक्लमंद है, वो जानती है कि कर्दम मुनि तो चले जाएंगे, संन्यासी जैसे है ही, लेकिन मेरी आसक्ति बनी रही उसका क्या। वो जानती है कि मुझे इसे छूटना है, ये तो चले जाएंगे लेकिन मैं तो किस पर आश्रय रखूं, बुढ़ापे में मेरा कौन, बेटा ही होना चाहिए। तो उसकी बेटे की भावना सही थी लेकिन वो मुक्ति के लिए बेटा चाहती थी, इसलिए कर्दम मुनि जान गए कि अकलमंद है, चलो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हारा बेटा बन के आए, तो कपिल देव बन के आए और उनसे कितनी बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे देवहूति ने। और विशुद्ध भक्ति के लिए ही कपिल मुनि ने उसे उद्देश्य दिया। ये तो सतयुग की बात है, क्या आसान है। और कपिल देव उन्हें समझाते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है, भगवान के नाम की महिमा क्या है। तो इतनी कड़ी कड़ी तपश्चर्या शुद्धि के लिए, प्रयत्न के तीन गुणों के लिए छूटने का प्रयत्न कर, फिर भी आसक्ति से छूटना। यदि इन इन बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी इतनी मुश्किल की बात, तो सामान्य मनुष्य की तो कोई बात पूछता ही नहीं। लंबी आयुष्य से क्या फायदा, क्या जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है क्या लंबी आयुष्य से? ये फायदा तो एक विशुद्ध साधु चरित्र अपने बीच में हो तो उसके लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, क्योंकि वो किसकी याद दिलाएगा, भगवान की। साधु चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर ही हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
तुरंत निकल जाता है। ये उत्तम अधिकारी कहलाता। तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता इसीलिए है कि ये भवबंधन काटेगा सीधा, वहां बौद्धन भवबंधन करने के लिए टाइम पास करने के लिए तपश्चर्या ही दी गई है ना। तो इस ढंग से हमें ये सोचना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में तो दुर्गुण बताया कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महत्वगुण, वो भी कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रजे, न तो शिव जी का नाम न तो किसी का नाम, कृष्णस्य मुक्त संगम परम रजे। और
मैं सॉरी, हाउ कैन डेवलप द टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम,
हाउ डू वी डेवलप द टेस्ट, how did you develop taste to chant Rasgulla? Because it has to come in the contact with the object of senses. Contact karna chant. If you chant purely, the taste will be developed. Taste means ruchi. Ruchi kab paida hoti hai? Pehle ruchi aati hi nahi. Pehle shraddha, baad mein satsang, baad mein bhajana kriya, baad mein anartha nivritti, baad mein nishtha, और बाद में रुचि। तो ये पहली पांच अवस्थाएं क्लियर नहीं होगी तो रुचि कैसे आएगी? रुचि लाने के लिए एक गुणों बीच में क्यों है? रसगुल्ला खाना है लेकिन उसमें कंकड़ भी भरी है, एक मुंह में दावत यानी कि स्वाद तो जैसे लगता है लेकिन खाने में मजा नहीं आती, यानी कि टेस्ट जैसा लग रहा है लेकिन रुचि नहीं, क्योंकि मुंह बिगड़ेगा, चलो रखो उसे, ये है ये है फिर भी हरिनाम है, पर अभी इसमें कंकड़ मिक्स है, अनर्थ निवृत्ति नहीं कुछ नहीं, तो तब टेस्ट नहीं आता उसका। तो निष्ठा जब आती है, निष्ठा अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है, ये सब होते हुए ही हमें असली स्वाद क्या है, जब एक बार वो स्वाद लगे बाद में देखना आप लट्टू बन जाओगे इसके पीछे, उसे आसक्ति कहते हैं। जब भगवान के नाम के स्वाद के पीछे आसक्त रहोगे तब भाव पैदा होगा, जब भाव पैदा होता है बाद में प्रेम की अपेक्षा करना नहीं तो नहीं, और उसके लिए बहुत रोना पड़ेगा। तो जब टेस्ट ही बात है ना, तो ठीक बोलो, आप जब बोलेंगे तो सुनोगे अच्छे ढंग से तो धीरे धीरे टेस्ट आएगा, जब सुनते नहीं तो सफाई भी नहीं होती। अन्य चीज कोई डालने की आवश्यकता नहीं, टेस्ट बढ़ाने के लिए भगवान की लीला याद मत करो, भगवान का स्वरूप भी मत करो, भगवान का नाम भी सुनो। नाम जितनी पवित्रता सफाई लाता है उतना कोई दूसरा साधन नहीं। आप सभी माला करते हो, हाथ ऊंचा करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जय। जो नहीं करते प्लीज करो. आपकी कंजूसाई चली जाएगी. और कोई प्रश्न चर्चा?
कम से कम माला कितनी बार देनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा तो कितना ही, कम से कम?
कम से कम भी नहीं है, कम से कम 16 होती है. वो प्रभुपाद जी ने स्टैंप बना दिया है, हमारे लिए तो वो है ही नहीं.
ये और कंसीडरेशन करना चाहते हैं, कुछ और कम करना चाहते हैं?
और कम करना चाहते हैं. कम से कम 16 है. आप टाइम मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरह से? If you cannot manage your time, you are not going to manage your life. And management तो सब हर बार आना ही चाहिए. 24 घंटे में 2 घंटे का भी मैनेजमेंट नहीं कर पाते. सही? तो CEO बने को तो क्या करेंगे? क्या मैनेजमेंट करेंगे? कुछ नहीं. जो 16 माला का जब अच्छी तरह से कर सकता है, मैनेज कर सकता है, वो उसके पास अपेक्षा रख सकते हैं कि ये बड़ा मैनेजमेंट का बोझा उठा सकता है. सही ना? Because he can manage. Out of 24 hours, he can manage 2 hours. Fine, good. That's a good qualification. चलो एक भजन गाए. वैष्णव सॉन्ग बुक है क्या?
हाँ
दे दो. Thank you.
Uselessly, having obtained a human birth and having not worshipped Radha and Krishna, I have knowingly drunk poison. The treasure of divine love in Golok Vrindavan has descended as the congregational chanting of Lord Hari's holy name. Why did my attraction for that chanting never come about? Day and night my heart it burns from the fire of poison of worldliness, and I have not taken the means to relieve it. Lord Krishna, who is the son of King of Raja, became the son of Sachi, Lord Chaitanya, and Balram became Nitai. The holy name delivered all those souls who were lowly and wretched. Two sinners, Jagai and Madai, are evidence of this. O Lord Krishna, son of Nanda, accompanied by the daughter of Vishwakarma, please be merciful to me now. Narottam Das says, O Lord, please do not push me away from your reddish lotus feet, for who is my beloved except for you? Narottam Das
तो ये सीधी सरल बात है. यदि हम जो प्रक्रिया द्वारा इस युग में भवमुक्ति पा सकते हैं वो यदि अपनाते ही नहीं, उसके प्रति रुचि नहीं तो आसक्ति कहाँ. तो ये सारी अपने हृदय की कमजोरियां जब होती है तब ये सब रुचि इत्यादि पैदा नहीं होती. हरिनाम चिंतामणि में ये भी कहा है कि हृदय दौर्बल्यम और उसके साथ साथ असतृष्णा, भौतिक चीजों के लिए भी कामयाब जो काम चलाव चीज है उसके लिए भी बहुत तृष्णा रखना. तृष्णा यानी कि जिसके द्वारा हम तृप्त होते ही नहीं, ऐसी भौतिक काम चलाओ चीजों के लिए तृष्णा. ये दो चीज हमारी रुचि के प्रति अवरोध बनती है, अवरोध डालती है. तो ये हृदय की कमजोरी कैसे दूर करें? जब तक हम सत्संग यानी कि संकीर्तन साथ साथ में नहीं करेंगे तो हृदय की कमजोरी दूर नहीं है. ये सत्संग में इतना बल है जो आध्यात्मिक बल देता है. अकेले अकेले कीर्तन करोगे तो कोई फायदा नहीं. पवित्र काम है लेकिन फायदा यदि लेना हो तो सत्संग में करना चाहिए, साथ साथ में करना चाहिए. संकीर्तन समूह कीर्तन साथ साथ. असतृष्णा दूर करने के लिए भी ऐसे संघ की आवश्यकता बताई जाती है. असतृष्णा कि यदि हम जो कुछ कर रहे हैं ये दूसरों के ख्याल में होता है लेकिन जिनका संग कर रहे हैं और कोई प्रगतिशील होता है, क्योंकि एक सभी एक स्तर पे थोड़े होते हैं, तो जो आगे होता है तो वो कह रहा है कि जब तेरे मार्ग में बाधा आएगी, हाँ तो जरा इन चीजों से हट। कोई कौन देखे, कोई देखने वाला तो होना ही चाहिए। जो कोई कोई हमारी कमजोरी को देखता है तो वो मदद कर सकता है, तो ऐसा एसोसिएशन चाहिए। अन्यथा ऐसी रुचि अपना सब वर्धन नहीं होता, कुछ नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु की इस महामोली भेंट है जिसे संकीर्तन कहते हैं। तो उस समय पहले पहले भी अकेले अकेले कीर्तन करने वाले थे, लेकिन साथ में करने वाले कोई नहीं। संकीर्तन होते ही भगवान के नाम की महिमा जल्दी प्रकट होती है। जय
हिज होलनेस वेद संघ महाराज की जय।